रात्रि क्लास चल रहा था, 3/11/1966 चौथे पीस की मध्यांक में बात चल रही थी। शिव बाबा कब आया? जगदम्बा कब आई? ये ब्रह्मा कब आया? ये लक्ष्मी नारायण कब आया? और कहाँ गया? ये सब बातें देखो, तुमको सब अच्छी तरह से मालूम है। कि शिव बाबा कब आया, जिसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, कब आया? है? अरे है? हाँ, कब होती है? अच्छा, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले शिव बाबा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, माने आता है, फिर जगदम्बा कब आई? शिव बाबा से पहले आई या बाद में आई? बाद में आई, माने अभी आई नहीं। जगदम्बा आई या नहीं आई? है? आई? जो जगदम्बा आई, तो जगत पिता भी आया होगा। कि पहले जगदम्बा आई, बाप आया पहले या अम्मा आई पहले? बाप पहले आया। माता पिता दोनों साथ साथ हैं या आगे पीछे हैं? जो बच्चों की सृष्टि है, इन मानवीय बच्चों की सृष्टि में बच्चों के लिए माता पिता का अस्तित्व साथ साथ है या आगे पीछे है? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पिता पहले आ गया, पिता बीज कहा जाता है, माता आधार रूपी धरणी कही जाती है। बीज और धरणी का मेल होगा तभी तो बच्चा आएगा या नहीं। तो पहले शिव बाबा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते जिनकी यादगार है महाशिवरात्रि। लेकिन शिव बाबा तो साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है, तो वो साकार कौन? जरूर मनुष्य शक्ति का पिता है जिसमें मनुष्य आत्माओं का पिता शिव पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। लेकिन सिर्फ माता के द्वारा कहें या पिता के द्वारा कहें, किसके द्वारा? है अगर कहें माता के द्वारा तो माता साकार होती है या निराकार होती है? साकार में निराकार बीज कैसे डालेगा? है आदि पिता भी कहा जाता है, आदि देव भी कहा जाता है, आदि देवी भी कही जाती है, आद्या शक्ति कही जाती है। तो साबित हुआ कि जो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। माना ज्ञान का अखूट भंडार है, सत्य का अकूट भंडार है। तो उसके आने का मकसद क्या है? क्यों आता है? हैं? पतितों को पावन तो संग के रंग से बनाएगा कि बिना संग के रंग से बनाएगा? और संग का रंग वो त्रिकालदर्शी निराकार बाप जो मनुष्य आत्माएं स्वयं के रूप को ही नहीं जानती, अपने स्वरूप में टिके ही नहीं पाती, उनका संग का रंग करेगा। उनको संग का रंग लगाएगा, मेल होगा, एक बहुत मोटा हो और एक बहुत सूक्ष्म छोटा हो तो मेल होगा। एक का आकार हाथी जैसा और एक का आकार सांप जैसा लंबा तो मेल होगा। मेल होने के लिए समानता चाहिए ना। निराकार ज्योति बिंदु जो अति सूक्ष्म है, सदैव आत्मा है, देवांग में कभी आता ही नहीं, आत्मलोक में है तो भी आत्मा, और इस साकार सृष्टि में आता है तो भी सदैव आत्मा। तो जो सदा सत्य है, सदैव आत्मा है, उसका मेल किससे होगा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई सदा सत्य है? है? है कोई नहीं। इस सच्ची रूपी रंग मंच पर है सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम में एक शिव बाबा है, ये नहीं कहा शिव बाप है। शिव बाप तो परमधाम वासी हो जाता है, वो तो आत्माओं का बाप है। बाबा अर्थात ग्रैंडफादर तो नहीं कहा जा सकता। तो उसका मेल इस सृष्टि पर है, शिव बाप का मेल इस सृष्टि पर आने पर किससे हो सकता है? है? गीता में भी लिखा है नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य झूठ होता है उसको पाँव नहीं होते, वो सदा काल स्थायी रह ही नहीं सकता। इस सृष्टि पर सदा काल स्थाई कौन? कोई है या नहीं? जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। कौन? आदम, आदिनाथ, आदिदेव, एडम, तो संग का रंग लगाने के लिए किसमें आएगा? है, आदम नहीं आएगा। और तो सब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। एक परम पद विष्णु ही गाया हुआ है, जो आज से अंत तक इस सृष्टि पर विराट रूप में है। जिसे शिव बाबा कह दिए, उसमें किस लिए आता है? कोई कारण होगा है? सतयुग के आज से लेकर के, सत्व प्रधान युग से लेकर के कलयुग के अंत तक चारों युगों में मनुष्यात्माएं सुख भोगते भोगते नंबरवार शक्ति से क्षीण होती है या नहीं होती है? उनमें नंबर हैं या सब एक जैसी है? तो कोई तो ऐसी भी होगी जो अंत तक आत्मिक स्थिति की स्थिति को छोड़ती नहीं है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु है, और अंत में भी, जो आदि में सो अंत में भी विष्णु। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, जिनका आपस में मतभेद सतयुग के आज में भी नहीं होता और कलयुग के अंतिम जन्म में भी मतभेद नहीं होता। ऐसी आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा, लेकिन दोनों में एक ज्यादा पावरफुल होगी और एक कम पावरफुल होगी। तो आत्मिक स्थिति में भले सारी मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत में क्षरित होती हैं, नंबर वार चरित होती है, कोई तो द्वापर का आदि होता है और इतनी कमजोर पतित हो जाती है कि ऊपर से आने वाला धर्म पिता अब्राहिम उसमें प्रवेश कर लेता है, द्वापर के आदि से ही चरित हो गई। और कोई ऐसी होती है योग की पावर भरने वाली आत्मा, पात्र, इतना बड़ा पात्र, इतनी बड़ी बैटरी कि इतनी शक्ति भरती है और कलयुग के अंतिम जन्म तक कुछ न कुछ वो आत्मिक रूप में वो शक्ति बरकरार रहती है। तो जिस एक में वो शक्ति बरकरार रहती है उसी में शिव प्रवेश करता है। किस लिए प्रवेश करता है? है जहां ज्ञान और योग की शक्ति 100% लाने के लिए प्रवेश करता है। यज्ञ के आज में भी देखो, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। तो पावरफुल हुई ना, फिर छत्तर में भी देखो, जब एडवांस का ग्रुप शुरू होता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का संगठन तैयार होता है, तो उसमें पहली पहली आत्मा एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में नजर आती है और सारा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ। फिर एक से ब्राह्मणों की दुनिया में नई सृष्टि उत्पन्न होती है। वो ही आदि का परम ब्रह्म, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा पहला ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ता है, फिर दोबारा ज्ञान यज्ञ में आता है, तो पूर्व जन्म का जो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ है वो साथ लाता है या नहीं लाता है? वो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ क्यों तीखा जाता है? क्योंकि आत्माओं के बाप शिव से जो बच्चा बिछुड़ता है पहले पहले अलग होता है, तो उसको बाप उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे देते हैं, ये ले जाओ ज्ञान बाण। भगवान के पास क्या है? है ज्ञान की ही शक्ति है। कोई कहे भगवान क्या है? अरे भगवान ज्ञान का अकूट पुंज है, जिसमें से सारा निकाल लिया जाए तो भी सारा ही बचता है। तो वो अकूट पुंज शिव ज्ञान सूर्य निराकार, जिस मनुष्य शक्ति के पिता में पहले पहले प्रवेश करता है उसको साकार में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रख्यात करता है। और ज्ञान सूर्य तो सारे संसार को रोशनी देता है। यहां ज्ञान की रोशनी की बात है। ज्ञान में भी मुख्य पहला ज्ञान है मैं आत्मा ज्योतिर्बिंद। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं महामृत्यु के समय, कल्पांत के समय, महाविनाश के टाइम पर अपना अपना शरीर छोड़ करके आत्मलोक में जाती है। तो आत्मा बनकर के जाएंगी या देह वाहन लेकर जाएंगी? आत्मा बनकर के जाती है। तो उन आत्माओं को आत्मिक रूप में स्थित करने वाला कोई साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? जो चाहिए उसी को शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव के साथ एक ही नाम जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर। वो ही शंकर का रूप मनुष्य षष्ठि वृक्ष के ऊपर आत्माओं को आत्मिक स्थिति में खींचते हुए दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में नाम दे दिया है कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। देह का आकर्षण करने वाला या आत्मा को खींचने वाला? आत्मा को खींचने वाला। भक्ति मार्ग में सारी बातें स्थूल में उठाई है और ज्ञान मार्ग में सारी बातें सूक्ष्म में उठाई जाती है। तो पहले पहले है आत्माओं का बाप शिव, जो इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। फिर दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कौन प्रत्यक्ष होता है? है? अरे जगत पिता। और जगत पिता के साथ जगदम्बा भी प्रत्यक्ष होती है। जगदम्बा सारी मनुष्य सृष्टि की अम्बा, सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा नहीं, चंद्रवंशियों की अम्बा नहीं, इस्लाम वंशियों की अम्बा नहीं, बौद्ध वंशियों की अम्बा नहीं, जितने भी मनुष्य मात्र हैं कोई भी धर्म के, सबकी अम्बा। और अम्बा कन्या माता के रूप में होगी या बाप बीज के रूप में होगी? है, माता के रूप में, कन्या के रूप में ही होगी। जो भी देवियां होती हैं सबको कन्या का ही रूप दिखाया जाता है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने के कारण उनको क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। रूप देखने में कन्या का है, लेकिन बाप कहते हैं मैं कन्याओं को, वो माताओं को भी क्या बना देता हूं, कन्या बना देता हूं। है माता, धरणी है, धरणी माने धारणा शक्ति। कैसी धारणा शक्ति, ऐसी धारणा शक्ति है जो सर्व शक्तियों का गुणराज है, ऐसी शक्ति को भी धारण करती है प्रैक्टिकल में, आदि में। वो रूप कौन सा है? अरे प्रैक्टिकल में कोई रूप ऐसा हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में जिसने सहन शक्ति का ऐसा उदाहरण बन करके दिखाया कि दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं हुई जिसने ऐसा सहन शक्ति का रूप धारण किया हो? वो आदि रूप है। नाम क्या है? ब्रह्मा। लेकिन वो पुरुष रूप था या स्त्री रूप था? पुरुष रूप था। उसको एक्ट के हिसाब से कहेंगे बड़ी मां, ब्रह्म मां। लेकिन प्रैक्टिकल शरीर के हिसाब से बड़ी मां कहेंगे हाँ? नहीं कहेंगे। उस स्वरूप की पूजा नहीं होती है। पूजा कब होती है? जब वही ब्रह्मा की आत्मा उस शरीरधारी में, आत्मा में प्रवेश करे, जिस शरीरधारी आत्मा में यज्ञ के आदि में ऐसी हिम्मत आई कि साक्षात्कारों का विवरण प्रजापिता को सुनाया, वो हिम्मत दादा लेखराज ब्रह्मा में थी है? नहीं थी। वो हिम्मत अंतिम जन्म में जो विश्व रूप बन करके रहता है, माना पति पत्नी दोनों के संस्कार मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे का कभी भी विरोध नहीं करते, जो संसार में सृष्टि के आदि में नंबर वन विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होती है, वैष्णवी शक्ति नो विषय काल, उस आत्मा में विचार का विष 84 के चक्र में कभी आता ही नहीं है। वो आत्मा भी ऐसी शक्ति धारण नहीं कर सकी, हिम्मत नहीं कर सकी कि जगत पिता के सामने दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का विवरण दे सके। ऐसा विवरण किसने दिया है? किसने दिया? कोई माता थी, थी बड़बोली माता थी, बोल बोल करने वाली। दादा लेंसराज ने अपनी बहन को सुनाया, बहन की हिम्मत नहीं पड़ी पति को सुनाने की। तो उस बड़बोली माता को सुना दिया। बड़बोली माता ने वो हिम्मत दिखाई तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप बन गया। जो बच्चे हिम्मत करते हैं बड़ी बड़ी ईश्वरीय सेवा करने के लिए तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाप उन बच्चों में प्रवेश करके वाइब्रेशन की पावर देते हैं, दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं। और कोई मजबूत जिज्ञासु होता है उसको उठा लेते हैं। ऐसा बोला है या नहीं बोला ब्रह्म वाक्यों में? तो पहला पहला वो उदाहरण हुआ कि मनुष्य सृष्टि में जो कार्य आज तक भी 84 के चक्र में चारों युगों में कोई भी धर्म पिता भी नहीं कर सका। पुरानी सृष्टि का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, परंपराओं का विनाश, पुराने धर्म का धर्मों का विनाश, पुराने राज्यों का विनाश, वो कार्य कौन कर दिखाती है? है जगदम्बा कर दिखाती है। वो जगदम्बा का सात्विक रूप ब्रह्मा में देखा गया और वो ही जगदम्बा एक शरीर के रूप में, एक आत्मा के रूप में। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं या एक ही चीज है? तो जो जगदम्बा जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है या महाकाली के रूप में पूजी जाती है, उसमें दोनों रूप स्पष्ट दिखाए गए हैं। चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा दिखाया जाता है मस्तक पर, किसको? महाकाली को। और महाकाली जो बड़बोली है, जीव लंबी दिखाई गई है, वो शारीरिक रूप है, वाचा का रूप, वाक देवी भी उसे कहते हैं। उसे वाचा में कोई नहीं हरा सकता। वो क्या बड़ा काम करती है अभी बताया है? है पुरानी दुनिया का, तामसी दुनिया का विनाश कराई देती है। और दुनिया में बड़े से बड़ा विनाश मनुष्य सृष्टि का पंच भूतों में से कौन सा भूत है? प्रकृति तो संघात है पांच भूतों का, पृथ्वी। वो पृथ्वी जब तामसी रूप धारण करती है, विकराल रूप धारण करती है, तो बड़े बड़े भूकंप लाती है, और उन भूकंपों में दुनिया की जो ऊंची ऊंची नीची बिल्डिंगे हैं वो सारी धराशायी हो जाती है। और मनुष्य कहाँ रहते हैं? है? उन्हीं बिल्डिंगों में रहते हैं। तो मां विनाशकारिणी है अंत में, और आदमी भी, आदमी जो महाविनाशकारिणी साबित होगी प्रैक्टिकल में, वो अंत में नहीं होगी। जो आदि स्वंत बोला भी है अव्यक्तवाणी में, यज्ञ के आज में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? अम्मा का नाम पहले, तो वो कौन सी अम्मा थी? है लक्ष्मी अम्मा थी या काशी माता थी या बड़ी अम्मा थी? बड़ी माँ थी। तो देखो बताया शिव बाबा कब आया वो तुम बच्चे जानते हो, है? ब्रह्मा कुमारियों ने तो 66 में घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि लक्ष्मी नारायण का जन्म 10 वर्ष के बाद 76 में होगा। छत्तर में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, मना लिया कि नहीं? और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी क्या समझे, क्या समझे? है कौन सा बाप आया? यही समझा ना कि शिव बाबा आया, बापों का बाप परमपिता सुप्रीम फादर आया। तो क्या आया? है? आया, दुनिया नहीं जानती, लेकिन बाबा की मुरली कहती है कि तुम बच्चे तो सब जानते हो। क्या वो बच्चे नहीं, दुनिया भी? ये बच्चे नहीं बाजू में बैठे वाले, कौन? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स। कौन जानते हैं? तुम बच्चे माने सन्मुख बैठने वाले बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? कि शिव बाबा प्रैक्टिकल में, कैसे प्रैक्टिकल में? कि जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके दिल के अंदर दिल से ये आवाज निकले, एवर लास्टिंग आवाज निकले कि मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं कि आज 7 दिन की भट्टी करके निकले और बोले मेरा बाप आ गया, स्टाम्प पेपर पर लिख दिया, नोटराइज करा दिया, और फिर थोड़े दिन के बाद क्या कहने लगे? निश्चय बुद्धि बंद में रहते हैं या अनिश्चय बुद्धि भी बन जाते हैं? आज निश्चय रूपी जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय रूपी मृत्यु में चले जाते हैं। तो मृत्यु लोकवासी हुए या अमर लोकवासी हुए, क्या कहेंगे? मृत्यु लोकवासी हुए। अशिव बाबा तो मृत्यु लोक नहीं बनाने आता है, अमर लोक बनाने आता है या मृत्यु लोक बनाने आता है? अमर लोक बनाने आता है। अमर लोक बनाने वाला अमरनाथ, उसकी यादगार कहां दिखाते हैं? हा? नीचे या ऊपर? कहां है? कैलाश पर्वत तो फिर भी नीची स्टेज में है, अमरनाथ यादगार है क्या? अमर कहा जाता है देवताओं को, देवताओं का नाथ है। नरको नारायण जैसा देव बनाता है तो अमरनाथ है। वो अमरनाथ उसकी शिफ्ट है क्या? जब आते हैं सदगुरु के रूप में, वो आत्मा कैसा गुरु? सतगुरु। गुरु साकार होता है या निराकार? वो आत्मा सतगुरु के रूप में जब प्रत्यक्ष होती है तो उसकी निशानी है कि आते ही एक सेकंड में ढक से राजधानी स्थापन कर देती है। जनक के लिए क्या गाया हुआ है? एक सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जो एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकता है वो नई दुनिया की राजधानी स्थापन नहीं कर सकता। तब का लिए गायन होता है संमत एक एक एक। संपन्न राजधानी है, परिपूर्ण आत्माओं की संगठन की राजधानी है। जिस राजधानी में कौन कौन तीन प्रत्यक्ष होते हैं? पहले पहले है साकार रूप में जो सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में दिखाए जाते हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो बताओ ये तीन मूर्तियां जिनके साथ आदि में इस सृष्टि पर परमपिता सेवा आता है, जैसे माता के अंदर गर्भ में आत्मा आती है, आती है ना? तो कहा जाता है बच्चे ने जन्म लिया है, तो ऐसे ही गुप्त रूप में आता है। लेकिन जिन तीन मूर्तियों के द्वारा आता है और नंबर वाइज सृष्टि पर प्रत्यक्ष भी होता है, वो तीन मूर्तियां साथ लेकर के आता है। ब्रह्मा कौन? है सिर्फ ब्रह्मा कौन? जब आया गुप्त रूप में आया तो ब्रह्मा की आत्मा कौन? अरे ब्रह्मा एक का नाम या अनेकों के नाम? उन अनेकों में अव्वल नंबर कौन? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो है लेकिन पुरुष रूप है या स्त्री रूप है? है पुरुष रूप है। पुरुष रूप में ही भगवान संसार में प्रत्यक्ष होता है। स्त्री रूप में तो भगवान कभी गाया हुआ भक्ति मार्ग में किसी शास्त्र में है ही नहीं। लेकिन सृष्टि रचना के लिए स्त्री रूप जरूरी है, अनिवार्य है या नहीं है? है। तो वो मूर्ति कौन सी है जो स्त्री रूपणी भी होती है और इस सृष्टि के महानतम कार्य में जिसे कहते हैं महाविनाश, असुर संहारिणी भी गायी हुए है अव्वल नंबर, वो कौन है? जगदम्बा। उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से जो पहला बच्चा पैदा होगा वो बड़ा ब्राह्मण होगा या छोटे ब्राह्मणों में से होगा? है बड़ा ब्राह्मण होता है। जो संगम में बड़ा ब्राह्मण है, सो सतयुग में बड़ा देवता, वो त्रेता में बड़ा क्षत्रिय, द्वापर में बड़ा वैश्य और कलयुग में बड़ा शूद्र। तो गाते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध सर जगत उजियारा। परंतु वो चारों युगों में जो प्रताप होता है उसका मूल आधार कौन है? आधार धर्म। कौन बनता है बीज का आधार? बीज का आधार धर्म। तो कौन है वो अव्वल नंबर धरणी? जगदम्बा। वो जगदम्बा ब्रह्मा नामधारी, क्योंकि महाकाली के रूप में भी जो अंत में प्रत्यक्ष होती है वो भी नामधारी है या नहीं है? है? और नाम शरीर का पड़ता है या आत्मा का? उसमें जो चंद्रमा दिखाया गया है वो भी तो आत्मा है ना। तो महाकाली नाम चंद्रमा का है या शरीर रहने का है? शरीर धारण ही का है, वो ही आद्या शक्ति। यज्ञ के आदि में स्त्री रूपिणी ब्रह्मा है, पांच तत्वों का प्रैक्टिकल संहार, जिसने हिम्मत की तो जिस बात के लिए हिम्मत की वो हिम्मत बाप आकर के देते हैं प्रैक्टिकल में वाचा के द्वारा। तो वाक देवी गाई हुई है, वाक माने वाचा, वो वाक देवी भगवान जो सुप्रीम फादर कहा जाता है, उसके लिए ज्ञान का बीज डालने वाली है या भक्ति का बीज डालने वाली है? है माता कहती है भक्ति का, ज्ञान का बीज डालने वाली है। माने भगवान आता है, ज्ञान का बीज भी डालता है, या भक्ति का बीज डालने के लिए आता है? है ज्ञान का बीज डालने के लिए आता है। तो ज्ञान का बीज तो पुरुष रूप में डालता है और भक्ति का बीज पड़ जाता है जगत माता में, क्योंकि सुनना सुनाना ये भक्ति है या ज्ञान है, और समझना समझाना ज्ञान है। तो साक्षात्कारों को सुनना सुनाना किस प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा किया गया? माता के द्वारा। तो वो भक्ति हुई ब्रह्मा। बाबा का नारा है शिव बाबा का, क्या? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो वही भक्ति जो दादा लेखराज के द्वारा सन 47 में प्रत्यक्ष होती है, उस प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा सुनने सुनाने का बड़ा कार्य होता है या समझने समझाने का बड़ा कार्य होता है? है सुनने सुनाने का बड़ा कार्य। सबसे ज्यादा कि पहले कौन सी आत्मा के कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। और सबसे ज्यादा मुरलियों के रूप में सुनाने वाला कौन है? ब्रह्म। तो ये भक्ति के दो रूप हो गए, एक आत्मा का रूप और एक साकार देह का रूप। तो बताया कि शिव बाबा कब आया और जगदम्बा कब आई, बताओ? है आगे पीछे आया? जगदम्बा और जगत पिता आगे पीछे आई या साथ साथ आई? साथ साथ आई। सिर्फ दो के साथ ही आते हैं या तीसरी मूर्ति भी होती है? कौन है? वैष्णवी, जो ब्रह्मा सो विष्णु, माने कोई न कोई ब्रह्मा नाम रूपधारी ऐसा भी पुरुषार्थी है जिसमें शिव प्रवेश करके जब एक्ट करते हैं, चाहे बोलने की, सुनाने की, चाहे समझाने की, एक्ट प्रैक्टिकल में की जाती है कि नहीं? तो जब ऐसी एक्ट करते हैं क्योंकि ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा सुनना सुनाना, शंकर के तीसरे नेत्र के द्वारा समझना समझाना, दोनों के प्रैक्टिकल एक्ट से काम संपन्न हो जाता है, नहीं होता ना? प्रैक्टिकल संपन्नता कब होती है? जब तीसरी मूर्ति क्या करती है? विशेष क्या कार्य है? परिवर्तन शक्ति। कौन सी शक्ति? परिवर्तन शक्ति। वो शक्ति जब एक्ट में आती है तो सारा कार्य संपन्न हो जाता है। और प्रैक्टिकल काय से होता है संसार में? प्योरिटी से या इम्प्योरिटी से? दुनिया के सारे कार्य बड़े से बड़े कार्य, अच्छे से अच्छे कार्य और बुरे से बुरे कार्य भी कौन सी शक्ति से संपन्न होते हैं? है, प्योरिटी की शक्ति से। उदाहरण, वृंदा का नाम सुना होगा? है, नहीं सुना? जलंधर की पत्नी वृंदा, जलंधर तब तक जीतता रहा युद्धों में ऊंचे से ऊंची मूर्ति जो कही जाती है शंकर, उसके साथ भी, उसके परिवार के साथ भी तब तक जीतता रहा, उसे कोई हरा नहीं सका जब तक वृंदा जलंधर के साथ रही पवित्रता की पावर देने में। अब विचार की शक्ति मिलती रही, पवित्रता की पावर वृंदा से जालंधर को प्राप्त होती रही, और जैसे ही वृंदा विविचारिणी बनी, वैसे ही जालंधर की शक्ति छीण हो गई, नष्ट हो गया। तो पवित्रता ऐसी शक्ति है जिससे स्त्री और पुरुष में सत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्व। पुरुष में वीर के रूप में और स्त्री में रज के रूप में। पूरे शरीर के अंदर हड्डी, मांस, मज्जा, खून, इन सब में सबसे पावरफुल चीज कौन सी है? है? यही सत्व। जिस सत्व के कारण स्त्री सती कही जाती है, क्या कहते हैं? सती। और भगवान को सत्य कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो देखो ये सत्य तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति की ऐसी आत्मा है जो ब्रह्मा से ऐसा विष्णु बनती है जो कोई भी जन्म में विविचारिणी नहीं बनती है किसी दूसरी आत्मा के साथ, एक को छोड़ करके है? वैष्णवी शक्ति, जिसे पार्वती भी कहा जाता है, पार लगाने वाली। अव्वल नंबर की पार्वती गाई जाती है या नंबर वार में से गाई जाती है? अव्वल नंबर पार्वती गाई जाती है। तो वो अव्वल नंबर पार्वती जो तीसरी मूर्ति है परिवर्तन शक्ति, वो लास्ट में प्रत्यक्ष होती है। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। लेकिन मुरली में कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर विनाश करता है? शंकर तो कुछ करता ही नहीं। करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? और वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, है? ये कोई कर्मेंद्रिय है नहीं? तो शंकर तो कुछ करता ही नहीं, याद में बैठा हुआ है, इसे कोई करना धरना थोड़े ही कहा जाता है। ये तो योग की शक्ति से वाइब्रेशन पैदा होता है और उस वाइब्रेशन से जो दुनिया का जड़ तत्व है, चाहे जड़त्वमयी प्रकृति हो, चाहे प्रकृति के रूप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश हो, चाहे उन पंच तत्वों का रूप धारण करने वाले जानवर हो, पक्षी हो, कीटाणु हो, जड़त्वमयी बुद्धि वाले, वो सब वाइब्रेशन से परिवर्तित होते हैं। वो ज्ञान सुनेंगे? है? सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? पांच जड़ तत्व ज्ञान नहीं सुनते, पांच जड़ तत्वों का संघात प्रकृति ज्ञान नहीं सुनते। लेकिन प्यार को तो सब पहचानते हैं, है? नहीं, चाहे जानवर हो, चाहे कीट हो, चाहे पशु हो, पतंगे हो, प्यार को सब पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? प्यार को सब पहचान, प्यार को ही याद कहा जाता है। लेकिन सच्ची याद है एक के साथ, एक के साथ अटूट प्यार, कभी भी धोखा देने वाला न हो, तो उसे कहेंगे योग की अपार शक्ति, सत्व, सती पार्वती, वो तीसरा रूप है। तो क्रम बताया, शिव बाबा कब आया, फिर बोला जगदम्बा कब आई है, कब आई, पहले शिव बाबा आया या जगदम्बा आई, जगदम्बा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, पहले शिव बाबा और साथ में जगदम्बा भी। ये ब्रह्मा भी कब आया, क्या ये इसकी तरफ इशारा किया, दादा लेखराज की तरफ इशारा किया, ये ब्रह्मा भी कब आया, बाजू में बैठा हुआ कब आया, कब आया, अरे है अच्छा गुप्त रूप में कब आया, ये ब्रह्मा कब आया, शिव गुप्त रूप में आता है तो जिन्हें पांडव ब्राह्मण कहा जाता है वो भी गुप्त होकर घूमते हैं या प्रत्यक्ष हो जाते हैं, हैं? तो दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में जो पंडा के बच्चे पांडव हैं, ब्राह्मण हैं, वो गुप्त हैं अभी भी या प्रत्यक्ष हैं, अभी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म नंबरवार कोई बच्चों ने नहीं लिया है, पहले शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है, फिर जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है, यज्ञ के आज में भी भले गुप्त थे एक समाज में सबसे जास्ती जिसका ब्राह्मणों की दुनिया में वर्चस्व था वो कौन था, अरे पीयू का नाम सुना है, पीयू की वाणी का नाम सुना, कोई पीयू नाम तक का था या नहीं था, था। और उसके साथ साथ कोई माता भी थी जिनके लिए मुरलियों में आया है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, कौन समझते थे, हम माने कौन, कौन बोलने वाला, ब्रह्मा, वो भी गुम हो गए, ब्राह्मणों की दुनिया से ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते करते गुम हो गए। तो आदि में सारे ही ब्राह्मणों की दृष्टि में ऊंचे थे या नहीं थे, ऊंचे थे, जो आदि में ऊंचे वो भी अंत में भी ऊंचे रूप में प्रत्यक्ष होते। तो अभी प्रत्यक्षता का अंतिम टाइम आ गया, जो बोल दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबर वार 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो इन 10 वर्षों में ये नंबर वार मनुष्य आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहती हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती रहती हैं, इनका मणका माला में नंबर डिक्लेयर होता रहता है। तो पहला नंबर है, पहला नंबर कौन, शिव बाबा, अरे मुरली मैं बोला ना शिव बाबा कब आया, अभी आया कि नहीं आया? माता कहती आया। अरे बच्चा पेट में आता है, गर्भ में आता है, तब कहते हैं बच्चा आया, या पेट से बाहर आता है तब कहते हैं बच्चा आया? तो अभी आया या गुप्त है? गुप्त है तो कहते हैं कि आया। आज कहते आया, कल कहते हम तो मुगालते में आ गए थे। ज्ञानी करने लग पड़ते, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो जाती है। आज कहते हम भगवान के बच्चे, कल मर जाते हैं। तो आया या नहीं आया? है? नहीं आया। जो अभी भी कहते हैं आया, भगवान आया, प्रत्यक्ष रूपी जन्म हो गया, तो अभी माया का फाइनल पेपर नहीं हुआ है? हो गया है? नहीं हुआ। माया ज्यादा बुद्धिमान या प्रकृति रूपी प्रकृति माता ज्यादा बुद्धिमान है? माया ज्यादा बुद्धिमान है और प्रकृति तो जड़त्वमयी है, वो तो उतनी बुद्धिमान नहीं है, लेकिन पावरफुल, पावरफुल माया से भी ज्यादा है। क्या प्रकृति पति और माता प्रकृति, प्रकृति पति की पहली रचना कौन है? मात्र माता। तो जो भी परिवार तैयार होता है, बच्चे, माता और पिता, उस परिवार में पिता के बाद सबसे जास्ती पावर किसके हाथ में होती है? माता के हाथ। भगवान भी सृष्टि पर आता है तो जिसको माता के रूप में स्वीकार करता है, धारणा शक्ति के रूप में, वो भी माता ही होती है। वो माता अव्वल नंबर में माता कौन हुई? आदि माता, आदि शक्ति कौन हुई है? अरे आदि ब्रह्मा कौन? जगदम्बा, स्त्री रूपिणी माने अम्मा। पुरुष रूप में है तो पिता। तो शिव बाबा कब आया, जगदम्बा कब आई और ये ब्रह्मा कब आया? क्योंकि माता पिता आए इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, प्रत्यक्ष रूपी जन्म लेते हैं, तो कोई का जन्म होता है या नहीं होता है सृष्टि में? हैं? सृष्टि रूपी वृक्ष में पहले पहले किसका जन्म होता है? धीरे से बोलते हैं। हाँ, पहले पत्ते का जन्म होता है। उस पहले पत्ते का, कृष्ण का जन्म होता है तो वो पहला पत्ता कहा जाता है मनुष्य सृष्टि में। देहधारियों के बीच में बड़ा भाई है या नहीं है? और देहधारियों के बीच में, देहधारी मनुष्यों के बीच में बड़े भाई का बाप कौन है? शिव बाप है। अरे साकार मनुष्य शक्ति की बात हो रही है। हाँ, उसे शिव बाबा कह दिया है। तो शिव बाबा, जगदम्बा और उसके बाद बच्चा कौन हुआ? ब्रह्मा। ये लक्ष्मी नारायण का भाई, चित्र की तरफ इशारा किया, ये लक्ष्मी नारायण का भाई जिनके चारों एड़ी से लेकर चोटी तक प्रकाश का वलय दिखाया है। क्या प्रकाश की दुनिया में दिखाए गए हैं? अंधेरे का नाम निशान नहीं है, वो नई दुनिया होगी एकदम, या पुरानी अंधकार की दुनिया होगी, अज्ञान की दुनिया होगी, नई दुनिया होगी। तो वो लक्ष्मी नारायण का भाई जिन्हें विष्णु कहा जाता है, है? सृष्टि रूपी वृक्ष का जो पहला पत्ता है वो एक दल से जन्म लेता है या द्विदल वाले बीज से जन्म लेता है? हैं? द्विदल वाले बीज से जन्म लेता है। वो प्रैक्टिकल में है, लेकिन दोनों दल जो बीज के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले बीज, जैसे दाल है, चना है, मटर है, इन दोनों का मेल दिखाया जाता है कहां? है? ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, जहां से नया पौधा निकलता है। पहले के पत्ते के रूप में निकलता है। अरे दो बीज मिले हुए होते हैं, जहां वहां बिंदु नहीं होता है? है, बिंदु होता है, माने दोनों दल बीज रूप स्टेज में इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे रूप में? बीज रूप स्टेज, माने रुद्रमाला के जो मन के बीज कहे जाते हैं सारे संसार के, उनमें अव्वल नंबर के दो बीज हैं, अध आधे आधे रूप में, एक लक्ष्मी और एक नारायण, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, माने निराकारी स्टेज दोनों साथ साथ धारण करते हैं, विष्णु कहे जाते हैं। विष्णु माने नो विषय का, विषय विकार का उनमें नाम निशान नहीं रहता, उन आत्माओं में दोनों में ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश, नाम ही है नारायण। अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल के घर में रहने वाले, क्षीर सागर में रहने वाले दिखाई जाते। तो ये लक्ष्मी नारायण बताए, कौन बनते हैं? द्विदल वाला बीज, प्रवृत्ति मार्ग का सूचक कौन है? अब्बल नंबर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, अब्बल नंबर जिन्हें विष्णु पद परम पदधारी कहा जाता है, तो बताया, ये तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है कि शिव बाबा कब आया, जगत पिता कब आया, जगदम्बा कब आई, और माता पिता से जन्म लेने वाले वो लक्ष्मी नारायण कब आए, ये ब्रह्मा कब आया, यज्ञ के आदि से ही ये ब्रह्मा हुआ या बाद में ब्रह्मा हुआ, आदि से ही ब्रह्मा हुआ, ये ब्रह्मा आदि में 7 साल एज थी नहीं थी, जब 7 साल एज हुई 47 में वानप्रस्थ अवस्था हुई तब इनमें आया। तो पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है, कैसे पता चला, जब ज्ञान मुरली सुनाई तो पता चला कि ऐसा ज्ञान तो दुनिया में कोई ने नहीं सुनाया। 47 से वो मुरलियां चलना शुरू हुई। द्वयम नंबर ब्रह्मा के द्वारा या तीसरे नंबर के ब्रह्मा के द्वारा या चौथे नंबर के ब्रह्मा के द्वारा क्या कहेंगे, जो ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु, जिसमें प्रवेश करते हैं जिस नंबर में उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा कौन से नंबर का ब्रह्मा है, तीसरे नंबर का, द्वयम नंबर का, हाँ चार नंबर का, इस मनुष्य सृष्टि में 33 करोड़ देवताएं ऊंचे गाए गए हैं श्रेष्ठ, और 33 करोड़ में भी मूल रूप में कितने ऊंचे गाए गए हैं, त्रिदेव। तो वो त्रिदेवों में से 3 देव कौन से हैं जिनकी यादगार में आज भी कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे विश्व में हमारा झंडा ऊंचा रहे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या कपड़े का झंडा है? तो वो 3 आत्माएं कौन, दादा लेखराज ब्रह्मा कौन फिर, जगदम्बा जड़ तुम्हें ही बुद्धि वाली है, जो जड़ तुम्हें ही होगी उसका नाम पहले होगा, या जो समझू होगी उसका नाम पहले होना चाहिए है। यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई, या एक ही थी है, 2 माताएं, एक बड़ बोली और एक बोलती नहीं थी लेकिन है विष्णु के रूप में थी अंतिम जन्म में भी या नहीं थी, है थी, तो वो कौन है, वैष्णव शक्ति परिवर्तन शक्ति। जिसने जगदम्बा की बुद्धि को, जड़त्वमय बुद्धि को भी घुमाए दिया। समझा करके आप समान बना लिया। तो मूल रूप में आत्मा कौन हुई? दूसरे नंबर का ब्रह्म है? है? अरे नर से नारायण बनाता हूं, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं, तो समझू को पहले बनाता हूं या बोल बोल करने वाले को ज्यादा बनाता हूं? है? तो दोनों माताओं में समझू कौन? जिसने सुना तो तीनों मूर्तियों के बीच में साक्षात्कारों का रहस्य सुना तो, लेकिन बोल बोल नहीं किया। समझने के लिए, फैसला करने के लिए कुछ टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। तो बड़ा बोली तो सुनते ही बोल 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 कर दिया, और जिसने बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से, अपने सत्व की ताकत से विचार किया और फिर फैसला किया, जो प्रजापिता ने सुनाया साक्षात्कारों का अर्थ कि सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा बनेगा, ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होगा। विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होगा। विनाश का साक्षात्कार किया तो अब इस सृष्टि का विनाश होने वाला है। ये सारी बातों को समझा। तो वो समझने वाली शक्ति आत्मा, द्वयम नंबर की आत्मा कौन थी? अरे दुनिया के सारे कार्य पवित्रता की शक्ति से होते हैं। ये जो ज्ञान चल रहा है, ईश्वरीय ज्ञान, चाहे बेसिक रूप में हो चाहे एडवांस रूप में हो, कन्या माताएं ज्यादा ग्रास्प करती हैं, समझती हैं, या पुरुष ज्यादा समझते हैं? क्यों है? क्योंकि भारत की कन्या माताएं प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा पवित्रता को धारण करती हैं या पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? कन्या माताएं ज्यादा धारण करती हैं, इसलिए वही उनकी बुद्धि पहले पकड़ती है। तो ऐसे ही उन दोनों माताओं के बीच में जो ईश्वर ने प्रजापिता के द्वारा ज्ञान सुनाया, साक्षात्कारों का बीज रूप में रहस्य सुनाया, ज्ञान का बीज डाला, उस ज्ञान के बीज को पहले पहले किसने समझा? प्रजापिता ने तो समझा ही, और समझ करके बोला भी, लेकिन उसके बाद किसने समझा? है? वैष्णवी शक्ति ने समझा। तो वो प्रजापिता और वो वैष्णवी शक्ति दोनों ही आत्माएं शूटिंग पीरियड में, संगम युग में ये शूटिंग कर देती हैं। क्या कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देने की? यहां दादा लेखराज ब्रह्मा को किसने समझाया? हैं? जिसने समझा होगा वही समझाएगा ना, हैं? वही समझाएगा। तो दोनों ही निमित्त बने, प्रजापिता भी और वैष्णवी शक्ति भी। जो यहां निमित्त बनते हैं ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, ब्रह्मा सो कृष्ण सतयुग के रूप में जन्म लेगा, तो ये शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो गई। तीन आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाती है, कौन कौन? ब्रह्मा कौन हुआ? ब्रह्मा जगदम्बा, जगदम्बा शरीर रूपिणी जड़ तत्व, या उसके अंदर समझू आत्मा है जगदम्बा। किसे कहें? पार्ट बजाने वाली आत्मा या शरीर? पार्ट धारी कौन, शरीर या आत्मा? पात्र किसे कहा जाता है? पात्र कहो, पार्ट कहो, शरीर। आत्मा नहीं पार्ट बजाती, आत्मा पार्ट बजाती। तो जगदम्बा में भी दो रूपे हैं, एक शारीरिक रूप और एक आत्मिक रूप। दोनों का मेल होता है, स्वभाव संस्कार से एक हो जाते हैं, तो महालक्ष्मी कही जाती है। क्या कही जाती है? महालक्ष्मी। ऐसे ही शंकर नाम रूपधारी और ब्रह्मा नाम रूपधारी, दोनों आत्माएं जब एक ही व्यक्तित्व में, एक ही पर्सनालिटी में काम करती हैं, तो क्या कहा जाता है? महानारायण। ये चारों का कॉम्बिनेशन है विष्णु। तो बताया शिव बाबा कब आया, जगदम्बा कब आई, ये ब्रह्मा कब आया, ये लक्ष्मी नारायण कब आया प्रैक्टिकल जीवन में, और फिर कहां गया? आया तो कोई न कोई प्रैक्टिकल शरीर में पार्ट बजाने वाली ये आत्माएं आई, तो हिस्से के रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष तो हुई, लेकिन फिर गई कहां? कहां गई? अरे इसी सृष्टि पर रही शरीर के साथ, जिनका नाम हुआ कि नहीं रही? रही। अरे रही जगदम्बा, रही है? सभी गुप्त हो गए। महाविनाश काल में सभी गुप्त हो गए या कोई रहा है? कौन रहा? है? कोई रहा नहीं। अगर बीज ही नहीं रहेगा तो ये सृष्टि कहां से आएगी? बीज रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बीज तो अविनाशी है इस मनुष्य सृष्टि का। इसीलिए कहते हैं कि शंकर को मरते हुए किसी ने देखा नहीं, जन्म लेते हुए किसी ने देखा नहीं। वो तो अज है, अनवद्य है, अनंत है, उसका अंत किसी ने देखा ही नहीं इन आंखों से। तो एक ही बीज है जो इस सृष्टि पर महाविनाश भी हो जाता है तो भी मौजूद रहता है शरीर के साथ, और बाकी सब है शरीर छोड़ देते हैं। तो बोला, अच्छी तरह से तुम बच्चे जानते हो, फिर भी मालूम होते हुए भी, तुमको भी मालूम है तो ज्ञान हुआ ना, परंतु याद की जो बात है ना, क्या मालूम तो हो जाता है तुम बच्चों को, लेकिन गड़बड़ क्या है? है याद की जो बात है ना, उसमें फेल हो जाते हैं। तो सब फेल हो जाते हैं या कोई बचता है? है कौन बचता है? है जो एक बचता है वो एक ही सत्य है या सारी दुनिया में अनेक सत्य हैं? एक सत्य है। जो द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग से विधर्मियों और विदेशियों से टक्कर लेते हुए असत्य से, अज्ञानियों से, झूठों से टक्कर लेते हुए संघर्ष करते करते अंतिम जन्म तक भी संघर्ष करता है, और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आते हैं तो गुप्त पांडवों के रूप में भी संघर्षरत रहता है। सत्य कभी हारता है? हारता है? नहीं हारता। सच्चाई के लिए तो गायन है कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलती है। तो बोला कि नारायण कब आया, जगदम्बा कब आई, शिव बाबा कब आया, लक्ष्मी नारायण कब आए, ये मालूम होते हुए भी तुमको ज्ञान तो हुआ परंतु याद की जो बात है उसमें तुम बच्चे फेल हो जाते। किसने बोला? किसने बोला है? अरे कौन सी आत्मा ने बोला? शिव बाप ने बोला। अच्छा, शिव बाप ही बेहद का बाप है और कोई बेहद का बाप नहीं है? है कोई कि नहीं? कौन? मनीष शेट्टी का बाप? वो नहीं बोल सकता है? अरे निराकार भी साकार के बगैर बोल सकता है क्या? है तो निराकार साकार दोनों ने मिलकर के बोला कि तुम बच्चे फेल हो जाते हो। किस बात में? है याद में फेल हो जाते हो, योग में, लगाव में, अटैचमेंट में। क्या कोई न कोई दूसरे के प्रभाव में आ जाते हो? प्रभाव में आते हो माने प्रजा बन जाते हो। प्रभाव में आना माने प्रजा बन जाना। तो बताओ इस दुनिया में वो कौन सी आत्मा है जो एक को छोड़ के सारे मनुष्य मात्र को अपने प्रभाव में ले लेती है, अनिश्चय रूपी मृत्यु मार देती है? कौन है? है? माया, माया के लिए तो अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया माया तंग आ चुकी है, है? माया तंग आ चुकी है, हैरान हो चुकी है। और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली जो माया जो ब्राह्मण बच्चों के सामने ज्ञान के रास्ते में दीवाल बनकर के खड़ी हो गई, न खुद आगे बढ़ती न दूसरों को आगे बढ़ने देती, वो माया बहुत तंग आ जाती है। जब तुम योगी बच्चों के योग के सामने तो क्या करती है? अरे बुद्धिमान है ना, तो क्या करती है, है? इकट्ठे होके बोलते तो बात ही नहीं समझ में आती। एक आदमी है प्रकृति के साथ हाथ मिला लेती है, तो अपने से ज्यादा जिसको पावरफुल समझा उसके साथ हाथ मिलाती है या कमजोर के साथ हाथ मिलाती है? जो पावरफुल बुद्धि से समझती है कि ये बड़ी पावरफुल है। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, किसी भी धर्म को बीज डालने वाले बाप, उन सबसे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिकल जीवन में, चाहे छोटे से छोटे धर्म पिता हो, महर्षि दयानंद जैसे, मोहम्मद जैसे, और चाहे बड़े से बड़े धर्म पिता इब्राहिम जैसे, क्राइस्ट जैसे, या सनातन धर्म का बाप ही क्यों न हो, जो काम प्रकृति माता करती है वो काम कोई भी धर्म पिता प्रैक्टिकल में नहीं करता है। कौन सा काम? विनाश का काम प्रैक्टिकल में। सबका गला काट देती है, अनिश्चय की मौत मार देती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी भगवान की सहयोगी भुजाएं क्यों न हो, उन सहयोगी भुजाओं को भी काट करके अपनी कमर का क्या बना लेती है? लहंगा बना लेती है। अपनी कमजोरी को छुपाए लेती है, उन सहयोगी भुजाओं के द्वारा ग्लानिंग करा के। किसकी ग्लानी? भगवान बाप की ग्लानी करा के उनको ऐसा प्रभाव में लेती है कि सारी दुनिया को अपना सहयोगी बनाए लेती है, अपनी रचना बनाए लेती है, अपनी प्रजा बनाए लेती है। प्रा माने प्रत्यक्ष, जा माने जन्म लेने वाला। कैसे? कैसे? प्रभावित करके। दुनिया वाले तो दूसरे धर्म वाले, दूसरे विदेश में जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं वो तो विधर्मी विदेशी, वो तो पतित तो बनते ही है, विविचारी बनते ही है, लेकिन भारतवासी उनसे भी जास्ती पतित व्यभिचारी बनते हैं कि नहीं है? उसका मूल कारण क्या बताया? वो दुर्गति का मूल कारण क्या बताया है? अरे भूल जा, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो शूटिंग कब होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। कब होती है? कब शूटिंग होती है? क्यों, दुनिया तो दुर्गति में गई सो गई, विधर्मी और विदेशी, लेकिन जो भारतवासी सबसे ऊंचे थे, श्रेष्ठ थे, वो भी दुर्गति में चले जाते हैं, पतन के गर्त में चले जाते हैं। क्या मूल कारण बताया? इन भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। दुर्गति माने महाविनाश। अच्छा, बड़ा विनाश होता है उसको कहते हैं महाविनाश, कहते हैं ना। तो दुनिया का आधा विनाश भी कभी होता है या नहीं होता है? है द्वापर के आदि में होता है ना, उसकी भी शूटिंग होती होगी ना, है नहीं होती? होती है। कब हुई है? हाँ, एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। एक तरफ पहले पत्ते का प्रत्यक्षता रूपी जन्म। भक्ति मार्ग में कौन सा दिन गाया जाता है? जन्माष्टमी। और भारत में आज भी उसकी यादगार में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा? 15। तो अर्धविनाश की शूटिंग भी होती है। प्रैक्टिकल में हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में या नहीं हुई? हुई। वो आधा विनाश था क्योंकि जो जगदम्बा रूपिणी महाकाली है वो फ्रंट में आती है, ईश्वरीय ज्ञान के विरोध में खड़ी हो जाती है, ईश्वर के विरोध में खड़ी हो जाती है। उसी समय की बात है जब अव्यक्तवाणी में बोला है, एक दो वर्ष के अंदर ही ये बात बोली गई। क्या? कि माया ने जगदम्बा से हाथ मिला लिया। वो तो अर्धविनाश हुआ। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में आज है, टूट के भाग गए घर की ओर। तो द्वापर के आदि में जो विनाश होता है, जो आधे खलास हो जाते हैं, वो फिर जन्म लेते हैं या परमधाम चले जाते हैं? जन्म लेते हैं। फिर भी वृद्धि होती है या नहीं होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि तो होती चली आती है। 98 के बाद की शूटिंग में भी और वृद्धि होते होते कलयुग के अंत की जब शूटिंग होती है तो उस शूटिंग पीरियड में एग्जैक्ट संगम युग आता है। कैसा संगम? सतयुग और कलयुग का संगम नहीं कहेंगे, युग का संगम नहीं कहेंगे, 100 वर्ष के संगम में वो संगम कहेंगे जहां 2 वर्षों का संगम होता है। क्या कोई 2 वर्ष हैं खास जिनका संगम? और वर्षों का ही संगम नहीं, एवरलास्टिंग संगम उसे नहीं कहेंगे। कोई महीना भी है जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। बाबा ने मुरली में बताई दिया पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन और पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो असली पुरुषोत्तम संगम कब हुआ? जब सारे संसार में अखबारों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा चारों ओर प्रत्यक्षता होती है, वो असली संगम कोई घड़ी है या नहीं घड़ी है, कोई दिन है या नहीं है, जिसके लिए साक्षात्कार से बनाए लक्ष्मी नारायण के चित्र में संगम की लक्ष्मी नारायण के नीचे लिखा हुआ है संबत एक एक एक। तो देखो ये याद किसी को नहीं है, क्या क्या कि वो पुरुषोत्तम मास कौन सा है, पुरुषोत्तम दिन कौन सा है और पुरुषोत्तम बनने की घड़ी कौन सी है। ये सारा ज्ञान तो तुमको बहुत है लेकिन याद में फिर भाई हम 84 जन्म का चक्कर खाया, ये तो बिल्कुल सहज है, एकदम सहज है। जैसे पार्क में बच्चों की एक सीढ़ी बनाई जाती है, चढ़ते हैं ऊपर और फिर आराम से रपटने भी नीचे चले जाते हैं, तो नीचे रपकना आसान या चढ़ना आसान है? नीचे जाना बड़ा आसान और चढ़ना कठिन हो जाता है। तो भाई 84 का जन्म का चक्कर तो हमने खाया, ये चक्कर खाना तो एकदम सहज बात हो गई, सुख भोगते आए इंद्रियों से और 84 का चक्कर खाते आए। मोस्ट इजी है, परंतु याद करना बाबा को इस बात में अभी सब फेल हैं। कब की बात बताई है? अरे ये मुरली कब की है? हैं? क्या चट की बताई? इस याद की यात्रा में सब फेल हैं। सच नहीं बताते हैं क्या? सब सच बताते हैं, मना अपना अपना पोता मेल सब सच देते हैं कि पुरुषार्थ करने वाले कोटों में कोई एक है जो अपना पोता मेल पूरा सच्चा सच्चा देता है। क्या बोला, क्या बोला मुरली में है? कोटों में पुरुषार्थ करने वाले करोड़ों में कोई एक है जो अपना सच्चा पोता मिल देता है। और भगवान को क्या प्रिय है? है? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। उस गॉड को क्या प्रिय है? है? सत्य, सच्चाई प्रिय है। कोई गुण हो या ना हो लेकिन भगवान विशेष रूप से क्या देखता है? सच्चाई। तो सच नहीं बताते हैं। सच बताते हैं कई कई जो चार्ट हमको भेज देते हैं, बाकी तो गपोड़े लगाने वाले सब हैं। माना जो चार्ट भेज रहे हैं वो फिर भी सच्चे हैं, लेकिन जो चार्ट भेजते ही नहीं वो क्या है, हैं? गपोड़े लगाने वाले। इसलिए उनको वो खुशी नहीं है, वो सर्विस की खुशी नहीं है, जिस सेवा से खुशी का क्या मिलता है, मेवा मिलता है। क्योंकि याद करने वाले को ये जरूर रहेगा कि हम इनको ये पहले समझाएं कि बाप को याद करो तो तुम वर्षे के हकदार हो जाओगे। कौन से वर्षे के हकदार? बाप का वर्षा क्या है? सुख और शांति। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद सुख और शांति का वर्षा देते हैं। तो जिसको ये बेहद खुशी का वर्षा मिलता है वो शूटिंग करता है, रिहर्सल करता है जन्म जन्मांतर खुशी में रहने की। उसकी निशानी क्या होगी? वो यहां इस पतित दुनिया से, इस गंदी दुनिया से, गंदी दुनिया को छोड़ करके मन बुद्धि से ऊपर उड़ेगा जरूर। क्या? मन बुद्धि गड्ढे में रहेगी या ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी, अमरनाथ में जाएगी, जहां अमर देवताओं को बनाने वाला बाप बैठा हुआ दिखाया गया है भक्ति मार्ग में। उड़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये दुनिया हेल है ना। क्या है? हैं? हेल माने हेल कहते हैं, नरक को भी कहते हैं, लेकिन भाड़ को भी कहते हैं। क्या? जो भाड़ होता है जिसमें चना भूना जाता है, एक छोटा सा कमरा बनाते हैं, बीच में छोटी सी दीवार डालते हैं, ऊपर खुली रहती है कमरे के अंदर, एक तरफ सूखा रख होता है उसमें से ईंधन डालते हैं, जोर से आग उड़ती है और वो ऊपर से दूसरे पोर्शन में जाती है, वहां रेत पड़ा हुआ होता है, वो रेत खूब गर्म होता है क्योंकि दूसरी तरफ का छेद थोड़े समय के लिए बंद कर देते हैं, तो वो आग सारी उस रेत में घूमती रहती है। आग का घनत्व तो बढ़ता है, रेत खूब गर्म हो जाता है, फिर वो दूसरी तरफ का छेद खोल करके कच्चा चना नीचे गड्ढे में डाल के रखता है किसी बर्तन में, और रेत निकालता जाता है और चनों को भूनता जाता है। उसको कहते हैं भाड़, आग का भंडार। कौन सी आग है? ये दुनिया कौन सी आग का भंडार बन जाती है? काम अग्नि का भंडार बन जाती है। कैसी काम अग्नि? जैसे बंदरों का मिसाल दिया, बंदर छुप करके काम अग्नि भोगते हैं या पेड़ की टुंगस पर जाकर के काम भोगते हैं? उन्हें शर्म आती है? हैं? नहीं आती। ऐसे दुनिया होने वाली है, कैसी के सामने सामने नंगे होके विकार भोगते रहेंगे और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी काम की अग्नि भड़कने वाली है इस दुनिया में, अभी भी देखा जाता है। मां बाप ऐसे विकारी बन रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के सामने ही विकार भोगते रहते हैं और बच्चे इन आंखों से देखते रहते हैं और बच्चे भी वही काम बचपन से करना शुरू कर देते हैं। मुरली में बोला, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता, गुरु चेले चोली चेली को नहीं छोड़ता। कन्याओं के तो सात दुश्मन बन पड़ते हैं, इसलिए जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप की शरण में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने वाले कौन होते हैं? कुमार, अधर कुमारियां, बूढ़े बूढ़ियां, कौन होते हैं? हैं? कौन? माताएं, या माताएं ज्यादा बैठी हैं सरेंडर होने वाली हैं? कन्याएं भागती हैं, सात्विक बुद्धि होती है, दुनिया की सच्चाई को पहचान लेती है ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, और कन्याओं की संख्या ज्यादा होती है। तो बताया, सबको बताते हैं, कन्याएं हो, अधर कुमारियां हो, अधर कुमार हो, बूढ़े हो, बूढ़िया हो, सबको बताते हैं ये दुनिया हेल है ना, यहां से मन बुद्धि रूपी आत्मा को उड़ना चाहिए कि रहना चाहिए? उड़ना चाहिए। बच्ची इस दुनिया को जहन्नुम कहते हैं। क्या? ये दुनिया जन्नत नहीं है, स्वर्ग नहीं है, क्या है? नरक है, जहन्नम है। इस दुनिया को पतित दुनिया कहते हैं। यहां से पावन बनकर पतित दुनिया है, तो यहां से पावन बनकर के जाना है। यहां पावन बनकर के जाना है कि वहां जाके पावन बनेंगे? हैं? हाँ, बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि यहां इसी सृष्टि में रहते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए मन बुद्धि आत्मा को ऊपर उड़ा के ले जाने की प्रैक्टिस कराते हैं। उस प्रैक्टिस में कौन है नंबर वार? तीन आत्माएं जो आगे आगे जाती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर उड़ा ले जाती है, शरीर भूल जाता है, शरीर को मुर्दा बनाए देती है। कौन है तीन आत्माएं? है नंबर वार कौन है? नंबर वार शंकर, विष्णु और ब्रह्मा। तो पावन बनकर जाना है तो पावन संग के रंग से बनेंगे। इसी दुनिया में संग का रंग इन कर्मेंद्रियों से लेंगे, मन बुद्धि से संग का रंग लेंगे, तब इसी दुनिया में पावन बनकर जाएंगे। या वहां जाना है, वहां बनना है, तो किसके संग के रंग से पावन बनकर जाएंगे? बिंदु ज्योति बिंदु की याद से संग का रंग लगेगा है। 63 जन्म जो पतित बनने का संग का रंग लिया है वो निराकार का संग लिया है, है? किसका संग लिया है? साकार का लिया है। साकार कर्मेंद्रियों के संग के रंग से, साकार कर्मेंद्रियों का जो मुखिया है मन, उस मन के संकल्पों से संग का रंग करके, मन मना भव बन करके, मेरे मन में समा जा, मेरे मन के संकल्पों में समा जा, ऐसे संकल्पों का संग का रंग करके लगा करके ऊपर बुद्धि जाएगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा। और बस वह एक ही अक्षर अलफ है क्या, जो इस दुनिया में रहते हुए शरीर के साथ 100% क्षरित होता ही नहीं। अक्षर है इस दुनिया में भी, इस सृष्टि पर सदा कायम है। सत्य सदा कायम है या असत्य सदा कायम है? तो बताया, गीता में भी बताया, दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक अक्षर जो कभी क्षरित पतित होती नहीं, और दूसरी क्षर पतित होती रहती है। लेकिन तीसरी एक और है जिसे परमात्मा इति उदाहरण है, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा है, मनुष्य आत्मा, उसको कहते हैं परमात्मा। उस परमात्मा की उसको टैली किससे किया? अन्य आत्माओं के साथ टैली करके बताया कि वो परमात्मा है मनुष्य आत्माओं के बीच में, परम पार्थधारी है। हीरो पाठधारी वो भी अक्षर है। आत्मलोक के लिए अक्षर है या मानवीय सृष्टि में अक्षर है? मानवीय सृष्टि में अक्षर है, वो तो सबको समझाना चाहिए जिसे अलफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलफ। अलफ माने है खड़ा धंधा, माने पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहता है, संगम युग में भी खड़ा रहता है, संघर्ष करता है लेकिन गिरता नहीं, हिम्मत नहीं हारता। और जो ब्रॉड ड्रामा है, 5-4 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी जो द्वैतवादी युग है, जहां झगड़े बहुत होते हैं, वहां भी संघर्षों की दुनिया में खड़ा रहता है या गिर जाता है? खड़ा रहता है। एवरलास्टिंग गिरने की बात ही नहीं, तो वो भी अक्षर है। बताया, वो सबको समझाना चाहिए। वो माने क्या है? वो जो अक्षर है जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहत है, जिसे गीता में परमात्मा नाम से बोला गया है, वो सबको समझाओ। क्या? क्योंकि जितने भी विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं हैं, दुनिया की ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में आबादी निराकार को तो सभी मानते हैं, मानते हैं ना। लेकिन उस साकार को कोई नहीं जानता जो इस सृष्टि पर सदैव अक्षर है, कभी भी क्षणिक, कभी भी गिरता नहीं है। और जाति बकवास, कोई ज्ञान सुनाने में बहुत बोलते हैं ना, दुनिया भर की बातें बोलते रहेंगे, और जो परिचय देना चाहिए वो परिचय वो नहीं समझा पाते, तो और बकवास। पहले 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 ये बात उनको बताए देते हैं समझने वालों को, और मैं कह देता हूं कि बाबा ने कहा था 5000 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हुआ था, उस समय भी उफ बाप ने ही कहा था, भगवान वा भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। किसको नहीं कहा जा सकता? भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, किसी मनुष्य को भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अरे तो फिर किसको कहा जाता है? बिल्ली को कहा जाता है, मनुष्य को नहीं कहा जाता तो किसको कहा जाता है? अरे अरे मनुष्य का तो अर्थ समझ लो, मनुष्य किसे कहा जाता है? जिसका मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है, मन से संकल्प विकल्प करता है, और जो मन को याद में ठहराए देता है, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, और दूसरा कोई संकल्प नहीं, इसी स्टेज में निरंतर ठहर सकता है। उसको मनुष्य कहेंगे? निरंतर बिंदु की याद में रहता है, दूसरा कोई संकल्प नहीं करता है, उसको मनन चिंतन मंथन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मनुष्य कहेंगे? तो क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? हाँ, जैसे धनवान जिसके पास धन बहुत है तो क्या कहते हैं? धनवान। ऐसे ही कोई बड़ा पहलवान है तो कहने तनवान, तन से बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही भगवान, बग कहा जाता है स्त्री रूप को। ऐसा शक्तिशाली संगठन और किसी भी मनुष्य मात्र का नहीं हो सकता, होता ही नहीं। जिसका होता है सृष्टि में उसको भगवान कहा जाता है, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने मात्र, प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के? है शरीर के साथ होता है। इसलिए बोला मैं तो सिर्फ शक्तिवान हूं। कहा जाता है मुझे सर्वशक्तिवान, लेकिन तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर ही है तुम्हारी, माने तुम प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मेरे तो शरीर ही नहीं है। किसने कहा? शिव बाप ने। तो और कोई को याद नहीं करना है, उसी एक को याद करना है। किसको? साकार में निराकार एक है या अनेक है? एक है। उसी को याद करना है। ऐसी ऐसी देवियों को तालियों को जीवन के लिए पड़ी है। कैसे बोला? बाबा ने एक्ट करके बोला, जीवन के लिए पड़ी है। ऐसी बात अभी लगती है, बात मत पूछो। चक्कर तो इन सभी देवियों ने, महाकालियों ने, कालियों ने लगाया है ना? नहीं लगाया है? अभी देखने में आता है ये सब भक्तिमार, माना इन सब को फॉलो करना, इन सब के प्रभाव में आना, ये सभी गिरने का मार्ग। क्या कहा? ये सब क्या है? एक को छोड़ करके और ये सब गिरने का मार्ग, और चढ़ने का मार्ग बाप आवे और समझावे। चढ़ने का मार्ग कौन? बाप आवे, सिर्फ सुने सुनाए नहीं, सुनने सुनाने वाला रूप नहीं। कौन सा रूप? समझे और समझाए। दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान बाप के तीन मुख्य रूप, बाप की चर सदगुरु, समझाने वाला रूप कौन है? टीचर। टीचर का काम ही है क्या? गद्य और पद्य, प्रोज और पोएट्री को एक्सप्लेन करना, विस्तार से समझाना। तो बाप आवे और समझावे, ऐसे समझाने वाले सुप्रीम टीचर के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है चढ़ने का। है? है? कोई मार्ग नहीं। ये सब یہ کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا ہیں؟ سارے ہی دیوی دیوتا ہیں، سارے ہی راکشس، سارے ہی دھرم پتائیں منشیہ روپ میں کیوں نہ ہو، یہ سب گرو ہیں بھکتی مار کے، اور ابھی بھی کائی کی شوٹنگ کر رہے ہیں، بھکتی مار کے گروؤں کی شوٹنگ کر رہے ہیں، ابھی بھی شوٹنگ کر رہے ہیں، سب دوسروں کو اپنے پربھاؤں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا سب نے بھگوان باپ کو ایور لاسٹنگ پہچانا ہے؟ آج پہچانتے ہیں، کل انشیہ بدھی ہونے لگتے ہیں تو کہیں کہ پہچانا ہے؟ خود ہی نہیں پہچانا ہے تو دوسروں کو کیسے پکی پہچان دیں گے؟ یہ سب بھکتی مارگ کے گرو ہیں، اور بھکتی تو اتھا ہے۔ کیا بھکتی مارگ کے گرو انیک یا تھوڑے؟ انیک، اور دینے والا گیان ایک ہے۔ وہ گیان کا ساگر کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹی بڑی ندیاں نہیں، گڈھے گڑیچیاں نہیں، تالاب نہیں، سروور نہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ساگر۔ جیسے ستھول ساگر ہے، اس کی گہرائی کو آج تک کوئی بھی ناپ سکا؟ نہیں ناپ سکا۔ ایسے ہی جو گیان ساگر ہے، اس کی گہرائی کو کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ اس ایک کو ہی کہا جاتا ہے گیان کا ساگر، اور اسی ایک کو کہا جاتا ہے سدگتی داتا۔ کس ایک کو ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بتائی۔ کیا ڈیفینیشن بتائی ابھی؟ ہے وہ گیان کا بیج بونے والا، وہی ایک آتما ہے، اور ٹیچر کے روپ میں سپریم ٹیچر بھی وہی ایک آتما، اور سدتی داتا بھی وہی ایک آتما ساکار روپ میں، سدا ساکار۔ کہ شیو باپ کی طرح سدا نراکار ہے، سدا ساکار، سرشتی کے انت کال میں، ایک دم انت کال میں، انتم چھڑوں میں، جب 500-700 کروڑ بھی آتما دیہ بھانو کو چھوڑنے والی ہوگی، اس سمے تک بھی وہ اس دیہ دھاری آتما کا باپ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ ہے دیہ دھاری کا باپ کہا جائے گا تو دیہ دھاری بھوگی ہوتا ہے یا ابھوکتا ہوتا ہے؟ بھوگی ہوتا ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا بھوگی کون ہوا پھر؟ شریر میں رہتے ہوئے بھی اس کے لیے گائن ہے، بنو پگ چلائے سنے بنو کانا، کر بنو کرم کرے بدنانا، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتا، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، کرمیندریوں سے कर्म करते हुए भी करता है या नहीं करता है? कर्म का फल बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। तो उसको समझना और समझाना है कितना सहज? सहज है या कठिन है? है बहुत सहज, लेकिन कितना बेचारे मत्था खाते हैं। रावण के सिर की तरह कितनी बार सिर चढ़ाते हैं, काट काट के सिर चढ़ाता है ना रावण, फिर बार बार है? बार बार नए सिर आ जाते हैं। कितना प्रश्नोत्तर करते हैं, कितना मत्था खपाते हैं, कितना मत्था खाते हैं, कितना हैरान होते हैं, कितनी मूर्तियां बनाते हैं पूजा करने के लिए। कितनी ये पूजा में लाखों खर्च कर देते हैं, बेसिक नॉलेज में भी, शूटिंग पीरियड में देवियों के पीछे लाखों रुपया खर्च करने वाले ब्राह्मण हुए या नहीं हुए? हैं? हुए। देवियों की पूजा की या नहीं की? मिला क्या कुछ? मिला? ये मूर्तियां बनाना बच्ची, इन मूर्तियां बनाने में बहुत भारी खर्चा होता है। अभी तो बेचारे गरीब होते जाते हैं, क्या खर्चा करते करते तन भी खर्चा, माने तन की शक्ति भी खर्च होती जाती, धन भी खर्च होता, ज्ञान धन से भी कमजोर होते जाते, मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति भी क्षीण होती जाती, पीछे साहूकार, जितना साहूकार उतना बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। उसमें कुछ खर्चे की बात है नहीं, समझा? मित्र, संबंधी, गुरु, गुसाई, काका, मामा, चाचा, स्त्री, पुरुष सब हैं, एक दो को दुखी करने वाले देह के संबंधी हैं, और इस सृष्टि पर एक है बिल्कुल ही सदा सुखी बनाने वाला, क्या उसके राज्य में, हिस्ट्री में जो भी रहे उन्होंने ये अनुभव किया कि जैसे बाप अपने तन से पैदा हुए बच्चों की परवरिश करता है, ऐसे ही वो राजा अपनी प्रजा की परवरिश करते हैं। उनके लिए कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो ऐसे उनकी बात भी एक ही है, माने वो बात बदलने वाला नहीं है, आज एक बात कहे और दूसरी बात कल कहे। जो झूठा होता है क्या करता है? आज एक बात कहेगा कल दूसरी बात कहेगा, बात बदलता रहेगा, बात भी एक। वो कोई दस बीस तरह की बातें नहीं सुनाते हैं, एक ही बात सुनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। क्या सुनाते हैं? सुनाते मुख से हैं या बिंदु रूप में सुनाते हैं? तो जिस मुख से सुनाते हैं कहते हैं मुझे याद करो, इसका मतलब क्या हुआ? साकार में निराकार को याद करो, या सिर्फ साकार को याद करो, या सिर्फ निराकार को याद करो? मुझे याद करो का मतलब यह है, बोलते हैं सुनाते हैं तो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। आत्मा और शरीर दोनों का मेल है या नहीं है? जीव आत्मा है ना, जीवित आत्मा है। तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि कोई दूसरी बिंदी को याद मत करो, ऐसे कहा जाएगा? ये बात समझ में आएगी कि मुझ बिंदी के सिवाय कोई दूसरी बिंदी को याद मत करो, ये बात समझ में आएगी? है? क्यों? क्योंकि बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे, पता कैसे चलेगा कौन से बिंदु को याद करें? कब पता चलेगा? जब बुद्धि से ये समझ लें कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, सुप्रीम गॉड फादर इसी एक साकार मनुष्य तन में आया हुआ है, तभी तो याद करेंगे एक को। है कि बिना समझे, बिना पहचाने, बिना पहचाने याद करेंगे नहीं? तो सिर्फ एक ही बात सुनाते हैं, और एक बात सुनाने समझाने के लिए इतना ज्ञान का विस्तार होता है, तो भी समझते हैं है? एवरलास्टिंग समझ जाते हैं। ये याद में ही बड़ी भारी गड़बड़ है। किसी याद में है? बेसिक नॉलेज वाले कहते हैं बिंदी को याद करो, मुरली में आता है साकार में निराकार को याद करो, तो कहते हैं उस बिंदी को साकार ब्रह्मा दादा लेखराज में याद करो, और शरीर ही छोड़ गया, वो जगत पिता साबित होता है, है? मुरली में तो बोला है बाप है, बाप कहे और बाप कहे भी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। कितनों से मिलते हैं? हैं? 500, 700 करोड़ से मिलते हैं। जो झाड़ का चित्र है उसमें ऊपर बैठा हुआ वो रूप साकार रूप, स्पष्ट दिखाया गया कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं निराकार को याद करने में सहज मानेंगी या साकार में निराकार को याद करना सहज मानेंगी? अव्यक्तात् गतिर् दुःखम् देहवद्भिरवापिते। अव्यक्त को याद करना बहुत कठिन है, दुख पूर्वक वो याद प्राप्त होती है। भगवान सहज रास्ता बताएगा या कठिन रास्ता बताएगा? ये धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो कठिन रास्ता पकड़ते हैं और कठिन ही रास्ता बताते हैं। तो ये याद में बड़ी गड़बड़ है। ओम शांति। ये याद में किसी आदमी में बड़ी गड़बड़ है कि निराकार बिंदु को याद करें कि साकार शरीर को याद करें? है हाँ, कि साकार में निराकार को याद करें। एक कन्नड़ मुरली में बताते हैं कि ऐसे भी आया है कि ना साकार को याद करना है, ना निराकार को याद करना है, ना आकारी को याद करना है। क्या साकार को भी नहीं, निराकार को भी नहीं और आकारी को भी नहीं, फिर याद किसको कर रहा है? ओम शांति।